Om Shanti and good evening. So we will have the sharing of experience of Brigadier Harbir Singh. तो ब्रिगेडियर हरबीर सिंह का जो परिचय है संक्षिप्त में, ब्रिगेडियर हरबीर ने तीन टेन्योर किए हैं सियाचिन ग्लेशियर में. ही हैज पार्टिसिपेटेड इन कारगिल वॉर, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस इन JNK एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड सर्व्ड इन यूनाइटेड नेशंस मिशन इन सूडान एज टीम लीडर ऑफ मिलिट्री ड्राफ्ट. He has been awarded Yudh Seva Medal in January 26, 2019 for counter-terrorist operations in South Kashmir, where he sustained a bullet injury also, and despite that continued with the operations. Sena Medal Gallantry on August 15, 1999 for Kargil War. Chief of Army Staff Commendation in 2013, in 2016 and 2019, SFC commendation in 2016, DG CRPF commendation 2019. Brigadier Harbir was commissioned on 25th of August 1990 in 11th Sikh Rallai Regiment. He has got many diplomas and degrees. He is MA in Public Administration, MSc in Defence and Strategic Studies, MPhil in National Security, Diploma in Senior Level Defence Management, Postgraduate Diploma in Human Rights, International Humanitarian Law and Refugee Law, Postgraduate Diploma in Disaster Management. He has been associated with Brahma Kumaris for the last about 25 years, or in the recent past he has been taken as advisor to the Haryana government on many of the military affairs and for the veterans. So we have decorated Brigadier Harbir, and he is here to share some of his experiences, because all his experiences cannot be compressed in the 45 minutes that he intends to take up. So once again, Brigadier Harbir, hearty welcome. And come and take duties.
Respected brothers and sisters and my dear colleagues, Jai Hind Ram Shanti. This is not the right time of the day to conduct any lecture. I will try and keep my experience short. But we thought that since so many spiritual lectures are being conducted, if one of us who has been practicing this Raj Yoga in personal life, how the Raj Yoga benefits in our professional life, if that experience could be shared with you all, probably the conviction will be a little more in this Raj Yoga which is being taught to us here. We can keep some time for the question answer towards the end. I would like to share maybe two or three experiences where the help by Shiv Baba, the Supreme Soul, was absolutely distinctly clear. I came in this Gyan when I was a captain, and since that time till this date, I say this lot of clarity, conviction, that he has handled everything. And when I say this, I'm not saying this out just as a academic thing. This is a fact of life. I came in this Gyan in 1996. In 1999, we all are aware, Kargil War took place. I was posted in Leh around that time. All those who were keeping tag of the activities at that time, we were not aware that it is full-fledged Pakistani army which has come this side and taken our post. Till May, last week, we were under the impression that probably some Mujahids have come and they are holding those pickets. It is only on 27 May 1999 when two of our aircrafts which were sent over those areas which were held by these so-called Mujahids. These two aircrafts were drawn by the Mujahids. Then we came to know that it is not some Mujahid people occupying those areas. It is full-fledged trained Pakistani army which had come. There was a lot of firefight, and whichever troops were available in the nearby areas, they were posted to these locations to throw the Pakistani army out of these pickets. In the first week of May onwards, what was happening was that the regular units which were supposed to occupy these posts after the winter were over, they were fired upon and we suffered a lot of casualties. Now, I was first deployed in Turtuk sector. In Turtuk sector, Pakistanis had taken about 15-16 posts of ours. And all the parties which went to take these posts, occupy these posts, they were taken by surprise and they suffered heavy casualties when the enemy fired at these people. There was one post in Turtuk sector around height of around 19,000 feet, which was not occupied by the army. It was not occupied by us also earlier. It was one of the most difficult feature in that area. The gradient, you can say, was around 70 degree climb. And when all these posts were occupied by the enemy, and it was impossible to attack and take them back, because it would amount to suffering more casualties, a decision was taken that we should capture that post which is unoccupied. One infantry commando team was firstly tasked to occupy that post. They went, they suffered casualties by enemy fire, could not succeed, came back. Then the Ladakh scouts were tasked. Ladakh scouts are the troops which belong to Ladakh, and they operate in mountains like a goat because they are born and brought up in those areas. The Ladakh scout also could not scale this feature. And in nutshell, our operations in Turtuk sector came to a standstill, because till the time we take this post, the operations cannot proceed further. Around this time, there was a thought process in the army headquarters, in the security establishment, that what do we do? Finally, a decision was taken, let's make one more attempt. Let's collect all the mountaineers available in various forces. Let's put all the best of mountaineers to climb this, because this was not occupied by the enemy also. And what was required was mountaineering skills to climb this post. The best of mountaineers were collected from different forces. I was a young captain, was made in charge of this party. We started on our mission from Turtuk on 3rd of June 1999. And this was, there were three camps, Camp 1, Camp 2, Camp 3 was at the base of this feature, and then we were to climb this feature. Now, we, since there was no staging facilities, there was no administrative facilities en route, so we had to carry everything at our own, like clothing, kerosene to drink water, because after stage 2, it was all snow all around. Ammunition, tent is, snow equipment, mountaineering equipment. So each one of us was carrying around 40 kg on our back. And after stage 2, the temperature was in minus. I'm just narrating these facts to amplify, to highlight the degree of difficulty. Okay. Anyway, we reached the base. I'll cut it short. We reached the base on 5th of June. And once we reached the base, you are in the open. The base was in the open. And the enemy post on both sides of the feature which we were to occupy could see us. And the firing started at our party, but this firing was small arms firing. Small arms is, you all understand, I think, LMG, rifle, you know, MMG. Small arm fire is not very effective beyond 2 kilometers. And ye jitni post thi, sare 2 kilometer ke ja duri par thi. So fortunately, this small arm fire was not effective on us. We were waiting for the night, and we thought that in the night we will start our operations. Also, during these 3 days, we had hardly eaten anything because we were on the move. We were carried very less rations, thinking that once we reach the base, then we will send a party to get the rations only, because the other stuff was too much for us to carry additional rations along with that. In the evening at around 4:30, enemy started artillery firing. Artillery, aap sab samajhte honge, jo top ka jo gola hota hai. And top ka gola jahan girta hai, wahan ke takriban 150 meters is the killing area. 150 meter ke ilaake mein, isme splinters nikalte hain, and they will kill any living being in that area. To first jo gola gira, wo humse takriban 800 meter duri par gira. Fir humse 600 meter aage ki taraf gira. So, all those who understand, bracketing hoti hai, they'll bring a gola aage, gola piche, then they'll keep closing the rounds so that the, finally the round comes on the target. So, when this thing started, we all could understand what is happening. And I could see, when the rounds were getting closer, the splinters were flying over us, we were lying on ground.
There is no place to run, there is no place to hide. And I could see face peela, jo drug ke mare phulata loko, because death was staring us in the face. Fortunately, before the rounds could come closer, it was last light. And once it is last light, sun sets and you were not visible to enemy, firing, stop. Now, we activated our plan B. Plan B was to send a party to get the ration so that we eat something and then we further move for our operation. Ye party jo niche jati hai, now by this time, the movement was along the ridge line. Us ridge line ke top mein dushman baitha hai. Now, the enemy had become alert by this time along the ridge line. They knew agar yahan pe koi party aa gayi hai, then ki maintenance turtuk se hi honi hai. Wahan se honi, then aane jaane ka raasta yahin se hona hai. So they all were active with the night vision devices. And when this party went, at every post, this party came under fire. Ek se nikle crawling karke, dusri ke samne se jo guzre the, they again came under fire. By the time they reached third post, this party was demoralized because they had seen firing during daytime also. We barely escaped death. Now again, the enemy is alert, firing coming. This party comes back at around 9:30. And this party informs the JCO ke sir, dushman alert hai, firing ho rahi hai, koi chance nahi hai ration link karne ka. Now all the options available to us were closed. Ration mila nahi hai, dushman alert hai. Aur agle din agar yahan hum rukte hain to wo RT jo pehle din 4 baje start hui thi, next day that RT will start at in the morning, and there is no chance of escaping. So the party decides ki sab wapas jayenge yahan se, because and acha that thing, that fact ke do attempt pehle ho chuke hain, wo bhi fail ho chuke hain, that was also probably playing at the back of the mind. They decides ki sab wapas jayenge. Now once you start practicing this Raj Yoga meditation, so I was into meditation right from that time I left from the roadhead. And jab meditation hote ho to jo sikha gaya hai ki soul hai, supreme soul hai, aise connection banta hai, it is a real thing and it is a very powerful thing. Once that connection is established, nothing in this world can shake you. Matlab is duniya ki koi bhi cheez aapko vichilit nahi kar sakti. So I was in that state. So when this party took the decision ki hum wapas jayenge, I said I am not going back. And since they were not directly under my command, wo alag alag se aa rakhe the, so I could not, you know, order them. I decided that I'll stay back. And ye bol ke I went to my tent at around 10 in the night, and this party went to their locations. Now after this, I'm not aware ki ye wapas gaye hain ki kya kar rahe hain, but I knew for sure that probably this journey of human life was only till this night, and tomorrow morning it will be over. So I wrote a last letter to my family, giving my last feelings and giving my messages to them that this is my own decision and this is the situation, this is how I'm leaving my body. I put that letter in my pocket and was just in meditation waiting for the morning to come and for this drama of life to come to an end. Now what was happening at the site, I had no clue. In the morning at around 5:30, the JCO and two more these mountaineers come to me and they make a victory sign. So I couldn't understand what they're saying. Then JCO tells me ki sir, hum raat ko jo char best wale mountaineers the unko humne rope fixing ke liye bheja tha, wo rope fixing karke aa gaye hain. And mountains mein agar aapki rope fixing hogi hai, uske baad then you just hold the rope, ground is there, then you just climb. So we started in the morning at around 8:30, and by around 11 we were on top of this feature. Post was established. We again came under fire from neighboring enemy post, but that again small arms fire was not effective. And artillery, aap ek choti ke upar fire kar hi nahi sakte because it is an area weapon. That is how we achieved success. This was the first success of Turtuk, where the operations had come to a standstill. And iske baad within 20 days, then our operations, we had put RTOP there, aur wahan se fir humne ek taraf se karke sare ka sara Turtuk ki post wapas le li gayi thi. So this, I'd like to attribute to that supreme soul, God, ki kaise jab aapke sare raaste band ho chuke the, and human mind wo वो फायदे में नहीं कर सकता था कि यहां से भी बचने का कोई रास्ता निकल सकता है, उसने वो भी पॉसिबल किया एंड पूरी टीम को किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। सो मच सो कि जब देन वी वर गिवन अनदर मिशन इन बटालिक एंड जुबार दैट एरिया, वी वर टू डीएनडक, और जो पार्टी हमको रिलीव करने वाली थी उसके इंचार्ज थे मेजर मनोज तलवार, मेरठ करने वाले थे, वेरी ब्रेव एंड वेरी फिजिकली फिट ऑफिसर। वो चढ़ते टाइम दैट ऑफिसर स्लिप्ड, हिज बॉडी ट्राई टू होल्ड हिम, द बॉडी ऑल्सो स्लिप्ड, बोथ डाइड व्हाइल मूविंग ऑन दैट फीचर। एंड बाय द टाइम आई रीच द बेस, उसको पहले दिन ऑफिसर को मिला था, हिज बॉडी वॉज देयर नेक्स्ट डे। देर आर मेनी अदर ऑपरेशन इन कारगिल इन बटालिक जुबार। इन वन ऑपरेशन वी लॉस्ट 31 जवान्स, 31 हू वर विद अस इन द मॉर्निंग एंड बाय नाइट। I'm not going to details. I'll just come to another one more experience and then probably we can do side na press karna sir. Pulwama, we all have heard Pulwama when the CRPF bus, the Jaise Mohammed one terrorist had done fidai attack and we lost around 42 of our brave CRPF soldiers. To ye 14 Feb 2019 mein ye hua tha. And since it was an attack not only on the CRPF convoy, it was an attack on the national security. So, jitne bhi Kashmir mein, I was a Rashtriya Rifle Sector Commander at that time in South Kashmir. So, jitne bhi intelligences thi, wo all were activated on hyperdrive. And on 17th Feb, we got input ki ye jo 5 terrorists thi, isme se 4 Pakistani thi, ek Kashmiri tha. Ye ek Pinglana ek gaon hai, wahan par they are hiding. And I was only at that time. So, रात को हमने ऑपरेशन लॉन्च किया एंड इन द ऑपरेशन वी लॉस्ट वन ऑफिसर मेजर डोंडियाल फ्रॉम देहरादून, वी लॉस्ट 3 जवान। एंड जो छुट्टी पे था हमें दिल्ली, देन आई लर्न्ड कि दिस इज द स्टेट वी लॉस्ट 4 ब्रेव सोल्जर्स। तो आई वेंट बैक फ्रॉम दिल्ली एंड 1 बजे जब मैं वापस पहुंचा, दिस ऑपरेशन वॉज स्टिल ऑन इन दैट विलेज। तो वेन आई रीच देयर, टोल्ड मी दैट सर 4 टेररिस्ट हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड एंड 1 मोर टेररिस्ट दे आर सर्चिंग फॉर। तो जब उसकी वो सर्च चल रही थी तब आई थॉट लेट मी सी द लोकेशन वेयर वी लॉस्ट दिस ऑफिसर एंड जवान इन द नाइट। तो आई वेंट टू दैट एरिया, अंडरस्टूड हाउ द फायर फाइट टू प्लेस एंड कैसे हुआ वो समझ के, व्हेन आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम ए नैरो लेन टू द मेन चौड़ा वाला गली, तो जैसे आई अलोंग विद माय प्रोडक्शन पार्टी मोर इनटू दैट चौड़ा वाला गली, one terrorist was this fifth terrorist Gaji Baba, who was the main top terrorist. He was heading under a tractor trolley and around 8 meters from our location. He was surprised to see us because wahan se to kisi ne aana hi nahi tha, baki fauje to aage piche thi, he knew, but we came on the road. He opened fire at us and it was a scary moment because somebody is firing AK-47 at you from 8 meters. And I was in my civil dress because मैं छुट्टी से गया था and I was not wearing any combat gear. तो उस we killed him within 1 minute after his, he had fired his magazine on us. तो उसमें 4-5 को उसकी गोली से वो नुकसान पहुंचा। डीआईजी थे अमित कुमार, उनके पेट में गोली लगी, वो इट वेंट थ्रू एंड थ्रू। एक पुलिस का एक इंस्पेक्टर था उसकी, इट इज फॉर एड, ही डाइड ऑन द स्पॉट। One of my major, he got hit in both the thighs fractured, he fell on ground. One of my QRT chap, he got a hit in the junk or pet ke beech mein, the bullet went through and through. And aise mauke pe kya hota hai, fir helicopter ready hota hai, then we called the Hector and all these casualties were evacuated. Uske 15-20 minute ke baad then I realized ki mere ko bhi pair mein there was little discomfort. Or when I ट्राउजर को ऊपर किया था, आई लाइज के गोली मेरा भी पैर के थ्रू एंड थ्रू निकली हुई थी एंड ब्लड वॉज कमिंग लाइक पाइप फ्रॉम बोथ साइड्स। अगेन यू नो लेसन फ्रॉम दिस, फर्स्टली जो इट वॉज ए नेशनल सेलिब्रेशन, अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे तो उस ऑपरेशन के बारे में आज भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, मतलब इंटरनेट पर जस्ट इफ यू राइट माई नेम ऑल्सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट ऑपरेशन विल बी देयर। It was a national celebration. Prime Minister Modi and the Defence Minister, they gave a statement on TV कि 100 घंटे के अंदर हमारे बहादुर जवानों ने उसका बदला ले लिया। It was a major operation, which again Shiv Baba made, I can say in due humility, me the medium of leading that operation. And आप सबसे उसके नजदीक टेररिस्ट के होने के बावजूद, किसी भी बुलेट प्रूफ न पहने के बावजूद, 5 को जो गोली लगी थी, माई इंजरी वॉज मिनिमम लिस्ट। तो और बहुत सारी चीजें हैं, जब हम उससे जुड़ते हैं तो हम आपको एक गाइडेंस टचिंग आने लग जाती है। मेनी अदर द टाइम इज लेस, तो आई विल नॉट डिवेल ऑन अदर एक्सपीरियंसेस, बट सफाइस टू से आप एक मेडिटेशन करने लगेंगे तो वो आपको टचिंग किसी को 3 दिन में आ जाएगी, किसी को 4 दिन में आ जाएगी, किसी को 5 दिन में आ जाएगी। और वो जब टचिंग आती है ना, देन ही टेक्स ओवर योर लाइफ। देन आपके पारिवारिक जीवन में, आपके प्रोफेशनल जीवन में, हर चीज में सही क्या है वो आपको एक डायरेक्ट टच करेगा वो। एंड आपको डिसीजन डिलेमा कभी होता ही नहीं है, यू विल नेवर बी इन डिसीजन डिलेमा। आपको बहुत क्लियर, नहीं तो हमको काफी चीजों में क्या डिसीजन डिलेमा होता है, बट वंस यू फॉलो हिज पाथ, मेडिटेशन करेंगे एंड वो कनेक्ट एक बार एस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आपका सारा काम वो संभालता है। गीता में भी कहा गया है कि आप मेरे ऊपर सब छोड़ के चलो, मेरे को याद करो, तुम्हारे काम भी मैं करूंगा। गीता में सारी चीजें जो भगवान ने लिखी हैं, वो हम में से हर एक अपनी आम जिंदगी में उसको अनुभव कर सकते हैं। एंड व्हेन ही टेक्स ओवर, फिर तो आप ये समझिए आपके फिर तो लाइफ सेलिब्रेशन। वो कैप्टन की जर्नी से लेकर और यहां तक पहुंचने की जर्नी में काफी अचीवमेंट्स हुए, बट उसका मैं क्रेडिट 0% भी नहीं लेना चाहूंगा। मैं ये अपनी आत्मा से, अपने दिल से ये बात मैं कह रहा हूं, उसका 0% भी क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूंगा, बिकॉज आई एम फुल्ली अवेयर एंड कॉन्शियस इट वॉज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ हिज हेल्प। कितनी विषम परिस्थितियां आएंगी, वो आपको ऐसी टचिंग करेगा और आप साफ निकल के आ जाएंगे। कश्मीर में हमने वो पीक टेररिज्म था, वो 2017 से मैं 19 मार्च तक वहां पर था, दैट वाज पीक ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर। हमने 100 के ऊपर टेररिस्ट को ऊपर भेजा होगा, और हर ऑपरेशन की डायनेमिक्स अलग होते हैं, मतलब आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना होता है, और दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं, आपको सिविलियंस को भी बचाना होता है, अपने ट्रुप्स को भी बचाना होता है। तो हर ऑपरेशन में ऐसी टचिंग आएंगी कि अभी इस पार्टी को ऐसे मूव कर दो, अभी इसको डिसीजन को ऐसे कर लो। आपको हर चीज इतनी साफ और टचिंग मिलती थी कि हमारे जितने भी ऑपरेशन थे वो सारे क्लीन ऑपरेशन थे, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं, कोई ऑल इंजरी नहीं, एंड इट वॉज यू नोन इन द एनवायरमेंट यार इस सेक्टर में क्या चीज ऐसी कि इनके बिल्कुल ऑपरेशन, इनकी इंटेलिजेंस ठीक होती है, ऑपरेशन ठीक होते हैं। इट वॉज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ गॉड। तो विद दिस आई विल ओके सर, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ अगेन हाउ टचिंग वॉज गिवन बाय शिव बाबा। एक कश्मीर में क्या था, अपने सबने अगर आप फॉलो कर रहे होंगे न्यूज को पिछले 5-6-7-8 साल से, तो जब हम थे उस टाइम पे जनाजा का वो सेलिब्रेशन बहुत होता था। जैसे मैंने को टेररिस्ट मरा है तो उसमें 15-20 हजार लोग आ जाएंगे, और टेररिस्ट फिर उसमें आके सेलिब्रेटरी फायरिंग करेंगे 7-8 टेररिस्ट आके, एंड दिस वॉज वेरी कॉमन हैपनिंग। एंड इससे हम सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत बहुत दिल पर लगती थी, किसी को भी लगेगी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है जिसमें रूल ऑफ लॉ चलता है, एक टेररिस्ट का लास्ट राइट चल रहे हैं, उसमें ओपनली टेररिस्ट आके फायरिंग कर रहे हैं, हम दूर बैठ के देख रहे हैं, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज उस 15,000 लोग आसपास हैं। तो हमारी बहुत लेवल पर डिस्कशन होते थे, हाईएस्ट लेवल के ऊपर कश्मीर के सारे टॉप कमांडर्स बैठ के इसको कैसे हैंडल करें। तो काफी स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की कि इसको हम स्नाइपर दूर लगा के स्नाइपर से मार सकते हैं उस टेररिस्ट को। देन वी रियलाइज के वो स्नाइपर वो स्टैटिक टारगेट नहीं, वो ऐसे ऐसे हिलते हैं वो, प्लस सिविलियंस उसके आगे पीछे बहुत हैं, तो स्नाइपर के लिए भी बात नहीं बनती है। फिर हमने सोचा कि ये जहां से वापस जाएंगे वहां हम एम्बुश पार्टी बैठा देंगे। देन वी रियलाइज के उसमें तो वापस टेररिस्ट अकेले थोड़ा जा रहे हैं, उसमें तो 500-700 लोग भी जा रहे हैं, वो एम्बुश पार्टी क्या करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन डिलेमा बना हुआ था। वहां पर एक टेररिस्ट था समीर टाइगर, समीर टाइगर एक बहुत ऊंचे लेवल का टेररिस्ट था। नाउ समीर टाइगर का एक और इंटरेस्टिंग, आप यूट्यूब पे जाके इसको देखना, आपको बहुत मिल जाएगा। समीर टाइगर ने वॉज टॉप कमांडर था कश्मीर में, वो उसने एक मेरा मेजर रोहित शुक्ला था राजपूत रेजिमेंट के, उसने मेजर रोहित शुक्ला अगेन बहुत जाबाज ऑफिसर था। सो मेजर रोहित शुक्ला को उसने चैलेंज किया कि मेजर रोहित अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, और ये क्या वायरल वर्ल्ड है, ये तो हर एक के पास स्मार्टफोन है। ये शाम को उसने 6 बजे उसको चुनौती दिया और ये तकरीबन दो घंटे में हर एक मोबाइल में घूम गई, मतलब पूरा कश्मीर में, सिविलियंस में, फौज में, नीचे भी। और अगले दिन सुबह 12 घंटे के अंदर सुमी टाइगर मेजर शुक्ला ने घेरा ऊपर। ये भी कितनी एक मूवी टाइप कॉन्फिडेंस आप मानेंगे। ये नहीं था कि हम उसको ढूंढ नहीं रहे थे, मतलब हम तो हर टेररिस्ट को मारने का एडी चोटी का जोर लगाएंगे, उस दिन का तो नहीं वेट करेंगे। बट कैसे कॉन्फिडेंस बनती है कि उसी दिन उसने चैलेंज दिया, वो चैलेंज पूरा वायरल हुआ और अगले दिन सुबह ये अगर रोहित शुक्ला या सुमित टाइगर आप टाइप करेंगे तो उसके ऊपर आपको 100-150 न्यूज हर एक न्यूज में उस दिन आता है। तो सुमित टाइगर मरा तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसकी जनाजे में तो 25,000 लोग आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट था। तो मेरे को कुछ बाबा ने टचिंग दिया, बड़ा क्लियर टचिंग दिया और मैंने ये डिसीजन लिया रात को, अगले दिन सुबह जनाजा होना है, कि मेरे नीचे तकरीबन 6,000 ट्रुप्स थे, काफी साउथ कश्मीर में फैले हुए थे। तो मैंने सारे कमांडिंग ऑफिसर्स को बोला कि सारे के सारे ये जो जितने मेरे 6,000 ट्रुप्स हैं वो जो द्रवगांव गांव है जिसमें जनाजा होना है उसके 5 किलोमीटर की पेरिफेरी में घेरा बना दो ताकि कोई आ ना पाए। तो ये पुलिस वॉज वेरी अनकंफर्टेबल कि ये फायर फाइट हो जाएगा, सिविलियंस मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ऑर्डर्स बड़े क्लियर हैं हर एक जवान को कि फायर कोई भी नहीं करेगा, अगर सिविलियन ज्यादा आते हैं नजदीक तो साइड में पड़ जाएंगे। तो सुबह ये 9 बजे के आसपास जब पुलिस ने देखा ये पूरी आर्मी लगी है तो उन्होंने पहले मेरे को रिक्वेस्ट किया कि यार सर इनको उठाओ, ये गड़बड़ हो जाएगी सर, सिविलियन कैजुअल्टी बहुत गदर हो जाएगा सर, ऐसा कुछ नहीं होगा। देन दे इन्फॉर्म माई बॉसेस जो कोर कमांडर बैठते हैं, जनरल साहब, DOC बैठते हैं। तो 11 के आसपास पूरी गवर्नमेंट ने और पूरा उनके ऊपर बहुत प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया मेरे को कमांडर पे कि यार इनको उठाओ। तो को कमांडर मेरे ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया कि हरवीर तुमको ऑर्डर है, हम इसको हटा लो यहां से। बट आई वुड से सर मेरी आप मानिए, मैं आपको वर्ड देता हूं कि एक भी गोली फायर नहीं होगी। वो मान जाए फिर उसको कहीं से फोन आ जाए, वो फिर मेरे को फोन आ जाए कि हरवीर अगेन यू आर बीइंग एडमेंट, प्लीज लिसन टू मी, डू दिस। ये तकरीबन 2 घंटे इतना प्रेशर मेरे ऊपर था मैं शब्दों में आपको बता नहीं सकता। और कितना बड़ा एक कि गोली चल गई तो कितना आपको लॉस ऑफ फेस भी हो जाएगा। एंड दीज कमांडर्स वर टोटली आफ्टर मी बिकॉज दे वर अंडर प्रेशर बाय द पुलिस, बाय द गवर्नमेंट। मे बी दिल्ली से भी फोन आ रहे होंगे यार तुमका सिविलियन के बीच में क्या कर रहे हो, आज तक ऐसा किसी ने किया ही नहीं। टू कट दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सुमित टाइगर के जनाजे में 300 लोग आए, 300। एंड जनाजा वॉज कंडक्टेड, नॉट अ सिंगल बुलेट वॉज फायर्ड बिकॉज सिविलियंस ने एक भी देखा ही नहीं था। सिविलियंस जो 20-25,000 आते थे उन्होंने फौज को ऐसे आते हुए कभी, तो दे ऑल गॉट ए मैसेज कि आज फौज इतनी तादाद में आई है तो कोई ना कोई प्लानिंग करके आई, आज फौज से पंगा नहीं लेना। वो इतना सक्सेस होगा, वही जो को कमांडर मेरे पीछे पड़े थे उन्होंने इस ऑपरेशन को फिर जब भी आर्मी चीफ आता, रक्षा मंत्री आता तो इसको एक मॉडल के तौर पर दिखा के सर हमने ऐसा एक मॉडल किया, हमने इतना शानदार वो किया। वो हमारा कश्मीर का सबसे बड़ा अचीवमेंट के तौर पर उस चीज को दिखाया जाने लगा। तो दिस अगेन वही करा सकता है एक इंसान में, उतना कन्विक्शन नहीं हो सकता, हम में से किसी में नहीं हो सकता इतना कन्विक्शन। जब ऊपर से आपकी हायरार्की आप पे इतना प्रेशर डाल रही है तो आप शायद आए जाएंगे उस प्रेशर के अंदर, बट बाबा की पावर, बाबा की टचिंग। तो ये मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये हम बहुत सब किस्मत वाले हैं जो आज इस प्रोग्राम आए हैं, भगवान का हमको इतना डायरेक्ट ज्ञान मिला है। और इसको अभी तक तो हमने सिर्फ आपने लेक्चर के द्वारा, वेरियस टॉक्स के द्वारा ये ज्ञान अर्जित किया है। इसको अनुभव करने के लिए मैं आप पक्का मैं चाहूंगा इस पर चलने की कोशिश करें। और कोई अगर सवाल, किसी का कोई क्वेरी है तो नहीं, वो सेक्टर कमांडर 12 सेक्टर आर, मैं सेक्टर कमांडर था। हाँ जी,
ये वजूर से आगे
सोफिया के साथ में, नहीं वो तो मैंने डिसीजन लिया हुआ था ना, मैंने वो डिसीजन तो मैंने पहले रात को ले लिया था, उसके बाद तो वो मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था और वो हर 10 मिनट के बाद फिर वही सिलसिला रिपीट हो रहा था बिकॉज उनको फिर कहीं से फोन आ जाता तो उस फोन को प्रॉब्ली ऑनर करने के लिए दे अगेन कॉल मी। तो ये सिलसिला चल रहा था, वो मेरे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। नहीं वो हमको पता होता है, ये जो आर्मी वाले हैं वो समझते होंगे, मतलब पैनिक बटन हर जगह पैनिक बटन दब जाता है, वो जो पैनिक बटन दबता है तो कोई यहां से फोन कर रहा है, कोई वहां से फोन कर रहा है, कोई चीफ फोन कर रहा है, कोई वाईसी फोन कर रहा है, कोई आर्मी कमांडर फोन कर रहा है, अलग अलग कहीं चीफ मिनिस्टर से फोन आ रहे होंगे। मैं दो चीजें आपको, आप सब मेरे से मैं मानता हूँ ज्ञान में भी बहुत बड़े होंगे, हर चीज में अनुभव में बड़े होंगे, बट मैं आपसे छोटा होने के नाते दो चीजें मैं पक्का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये जो कर्मा थ्योरी है ना, कर्मा थ्योरी, ये रियल है, मतलब हम में से हर रोज हमारे पास च्वाइसेस होती हैं सही काम करने की और एक नॉर्मल काम, मैं इसको गलत भी नहीं कहूंगा, नॉर्मल काम करने की, नॉर्मल जो आम दुनिया में लोग करते हैं। अब हम हर पल हर एक्शन से हर रोज अपना भाग्य लिख रहे हैं। अगर हम ये निश्चय करें कि मैंने काम बिल्कुल सही करना है, उससे भी आप देखेंगे कि आपको उससे जुड़ने में बहुत हेल्प मिलेगी और लाइफ में बहुत सरलता आती जाएगी। इसका एक छोटा सा जो मैंने सुना था उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की। अगर कोई भी हम काम करते हैं, कोई भी विचार लेकर आते हैं, उसमें एक चीज हम सोचें, अगर मेरे पेरेंट्स मेरे को इस विचार के साथ देखेंगे तो क्या उनको खुशी होगी, मेरे पेरेंट्स मेरे को ये एक्शन करते हुए देखेंगे क्या उनको खुशी होगी। ये एक एक ऐसा पैरामीटर था जो विच मैंने, मेरे को लगा लाइफ चेंजिंग पैरामीटर है ये। तो बहुत सी चीज हमारी अपने आप ही उससे ठीक होती जाएंगी और इन द लॉन्ग टर्म व्हाट गोज आउट इट कम्स बैक, ये आप हम सबने सुना है, लेकिन ये पक्का साइंस है, ये 100% साइंस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ज्ञान मत मुझे पक्का यकीन है आप चलेंगे, लेकिन ये कर्मा थ्योरी को भी अगर आज हम यहां सर लेके जाएं इस विजिट से, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। हमारी एग्जिस्टेंस से किसी भी आत्मा को, किसी भी लिविंग नॉन लिविंग बींग को हल्का सा भी पेन, दर्द, डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। ये अगर हम सुनिश्चित कर सकते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भरने से कोई रोक नहीं सकता। हम सब ने सुना है एज यू सो शैल यू रीप, इसका जो सही मीनिंग मेरे को भी बहुत बाद में समझ में आया, ज्ञान में आने के बहुत बाद में समझ में आया, मैं सोचता हूं काश ये पहले समझ में आ गया होता। तो इसका मतलब जो मैं समझता था कि हम किसी के लिए खराब ना करें तो वो भी मैं अच्छा कर रहा हूं, वो भी इतना अच्छा नहीं है। अच्छा तब है जब मैंने बबूल नहीं बोया था, बबूल मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन आम भी तो नहीं बोया। तो हमको अच्छा कर्म जो है हर रोज एक ऐसा अच्छा कर्म करना चाहिए याद से कि जिससे हम किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उसके हजार तरीके हो सकते हैं, मतलब वी नॉट गोइंग टू दोज डिटेल्स, बट ये अगर हम मान के चले कि मैंने हर रोज एक अच्छा ऐसा कर्म करना है जिससे मैं किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहा हूं, आप यकीन से देखिए एक वीक के अंदर हमारी लाइफ में खुशियां चमकती जाएंगी और उससे हमारी नजदीक, वो सच्चे दिल से प्यार करता है वो, उससे हमारी नजदीकियां बढ़ती जाएंगी। ये मेरे को बहुत सालों के बाद ये अचरज, मैं इस चीज को बहुत अचरज मानता था कि आई थॉट स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक भगवान का नाम लेके चलना है और अच्छे कर्म कर रहे हैं उससे मन की शांति मिलेगी, तो मैं इतना ऐसा ही मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन आपकी जो सांसारिक जिंदगी है उसके अंदर भी वो आपको इनाम पे इनाम देके, तरक्की पे तरक्की देके, तोहफे पे तोहफे देके आगे बढ़ाएगा, ये मेरी समझ से बाहर था। आई थॉट उसको भगवान को सांसारिक जिंदगी से क्या लेना है, वो तो आपकी आध्यात्मिक रिचनेस लाएगा। बट फैक्ट जो मैंने अनुभव किया, आप भी बहुत इसको जो चलेंगे अनुभव करेंगे, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, आपकी तरक्की, आपकी शोहरत, आपको अवार्ड्स ऐसे मिलते चले जाएंगे कि आपकी जो सांसारिक जिंदगी है उसको भी जितना सोचा था उससे 10 गुना वो अचीवमेंट से आपकी लाइफ को भर देगा। मैं यूएन मिशन में था सुडान में, तो जो यूएन मिशन में जाने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं जो हर एक अवसर को फुलफिल करने होते हैं, मैं एक भी क्राइटेरिया उनमें से फुलफिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कभी यूएन मिशन का सोचा ही नहीं था। जब उसकी पावर आती है, वो किस कौन सी पॉलिसी को कैसे चेंज कराता है, ही ओनली नोज। And not only that, वहाँ जाने के बाद भी मतलब military observers का team side का leader बना देना. मैं in due humility what I want to say is उसके रास्ते पर हम चलेंगे ना. आप देखिए हमारे बच्चे तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे और हमारे चारों तरफ खुशहाली से हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा. तो मैं आप सबको बहुत हाथ जोड़ के बहुत विनम्रता से कहता हूँ कि ये यहाँ पर जो आए हैं इस रास्ते को पकड़ के चलना, ये बहुत गोल्डन चांस है. ये दिस विजिट ऑफ आर्स कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, मतलब इससे पूरा जीवन जो है वो स्वर्ग बन जाएगा. आज शिवानी बहन का लेक्चर सुना सबने, ये सतयुग में ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे हम. बस उन्हीं चीजों को थोड़ा मन में संकल्प में रखेंगे. बट अच्छा, जो फर्स्ट टाइम आप आते हो तो फर्स्ट टाइम उसकी बहुत लिफ्ट मिलती है. हम भी जब ज्ञान में आए थे ये है भी, तो जब आप फर्स्ट टाइम भगवान के नजदीक लगते हो तो भगवान छोटे बच्चे की तरह आपको बहुत सपोर्ट करता है. वो तो आपके लिए बहुत आसान होगा. जो भी भाई बहन इसमें आगे अपना आध्यात्मिक जर्नी चलने इस लाइन में चलाएंगे मेडिटेशन के साथ, बहुत लिफ्ट मिलेगी, बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत खुशहाली मिलेगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.
थैंक यू हरवी भाई फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग एक्सपीरियंस. जितने हम लोग प्रैक्टिशनर हैं राजयोग में, हर एक के जीवन में बहुत बहुत अनुभव है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वी कांट शेड्यूल दिस. ईच वन ऑफ अस हैड गॉट यूनिक एक्सपीरियंसेस टू शेयर. तो हमारा नॉर्मली क्या होता है, जब हम जाते हैं किसी सेंटर में, कहीं भी जाते हैं, तो इनवेरिएबली क्लास शेड्यूल करते हैं जो उस सेंटर के भाई बहन हैं, और वहां पे जाके हमको कहा जाता है शेयर करो, क्योंकि सबको मालूम है हर एक का यूनिक एक्सपीरियंस कुछ न कुछ होता है. तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि आज आपके क्लास में ब्रिगेडियर हरवीर का शेयरिंग एक्सपीरियंस हुआ. और मैं कहूंगा जितने लोग प्रेजेंट हैं दे आर मोर फॉर्चुनेट बिकॉज दे आर एबल टू हियर, और जो लोग नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ एनी रीजन्स दे डोंट नो वट दे आर मिस्ड. बिकॉज वन थिंग इज, जो हमारे सेशंस जब से आप आए हैं हो रहे हैं, द अदर इज टू नो प्रैक्टिकली वट बेनिफिट्स कम. आई मीन ही रश्ड एज इंस्टिंक्ट ऑफ ए सीनियर ऑफिसर, ही रश्ड फ्रॉम लीव एंड ही डिडंट गो टू द ऑफिस और एनीथिंग, रश्ड स्ट्रेट टू द वेन्यू एंड ही वॉज नॉट आर्म्ड. पीपल गॉट किल्ड. In his case, the bullet went through his leg. It didn't even touch the bone. Because if it had touched the bone would have shattered. It just went and he never realized it till everybody was evacuated and he found that because of loss of blood, it has happened. So again, the bullets which were meant for others, it could have gone to him also. Others were at least in bulletproof jacket. He was not. So that is what, you know, when you come on Gyan Mark, then you realize your instincts become little more, your touching, jo hum kehte hain, jo hum bolte hain normal bhasha mein instinct, that thing comes. So these are the direct benefits. And if you catch anybody, here there is one individual in this campus, he was a famous businessman. He was unloading, having his glass plates, number of glass plates had come for his factory. He was owner of a couple of factories. So while the these glass plates were being removed, one huge glass plate fell on his legs and chopped off both the legs at the feet. They were just hanging. And he was taken to the hospital. He was already in Gyan. They said, one set of operation, they said another set of operation required. He meditated, he got the touching that don't do it. He refused the doctors, and today he is not only walking around, he runs, he does everything with that leg. So I know that, I mean, somewhere we share, he shared. So such, each of the individuals have got such fantastic experience out of practicing Rajyoga that they've been saved. They have other things going. So these are the benefits which come directly, and it is not hearsay. I had my bypass surgery. That was also went so smoothly during COVID times. None of the friends, nobody was around. We didn't know any doctor. My wife and I were there. I was inside. My wife was outside. Both in Gyan. So she was not perturbed and I was not worried. And everything came out smoothly. We were already in Gyan for many years and we were practicing. And in fact, in ICU, after they took me off the ventilator, then I gained consciousness. Then they used to ask me, in the entire ward, everybody was crying. They used to ask me, "Aap kya doctor ho?" Because I never cried. I used to wake up at 2 o'clock at night, but because I was used to doing the Amrit Vela, I used to lie down and do my meditation. So things became easier for us. Like that, many things have happened. Went through many accidents also, and the superior power saved totally. So in a nutshell, what Brigadier Harbir said, there are a lot of benefits of Rajyoga meditation, and like he said, just grasp it, and anybody's experience is initially when we start, then the divine help is there. जैसे कि बच्चे को जब हाथ पकड़ के चलाते हैं ना, तो बच्चे को चलना easy हो जाता है, और बच्चा समझता है कि मैं अपने बूते पे चल रहा हूँ, फिर जब उसका हाथ छोड़ देते हैं, तब वो लड़खड़ाता है। तो वैसे ही जब ज्ञान मार्ग में हम चलते हैं, तो it becomes easy. After some time, suddenly difficulty comes, because then the God says, ठीक है, अभी अपने पैरों पे चलने लायक हो गए हो, अभी चलो. उसके बाद जो अपने पैरों पे चलने लगते हैं, then they get benefit. जो फिर लड़खड़ा के रुक जाते हैं, तो they lose out the benefits. So we end the session here. Thanks to Brigadier Harbir.